रोम दृष्टि को स्थापित करता है। संख्या दो, आधुनिक रोम की पहचान और अंतिम दिनों का भविष्य सु चक दर्शन।
और उन समयों में दक्षिण के राजा के विरुद्ध बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और तेरे लोगों में से लुटेरे दर्शन को स्थापित करने के लिए अपने को ऊंचा करेंगे, परंतु वे गिरेंगे। दानियेल 11:5।
अंतिम दिनों में आधुनिक रोम के रूप में चित्रित की गई, अर्थात दर्शन को स्थापित करने वाली उस शक्ति की सही पहचान अत्यंत आवश्यक और उद्धारकारी है। ये 1,44,000 की अंतिम परख प्रक्रिया का एक अंग दर्शाती है। उस पद में दर्शन शब्द वही इब्रानी शब्द है जिसे सुलेमान ने तब चुना था जब उसने ये बताया कि परमेश्वर की प्रजा क्यों नाश होती है।
जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो धन्य है। नीति वचन 29:85।
सभी भविष्यद्वक्ता पवित्र इतिहास के किसी भी अन्य काल की तुलना में अंतिम दिनों के विषय में अधिक सीधे बोलते हैं और दर्शन को धारण करने की आवश्यकता के बारे में सुलेमान की चेतावनी जीवन मरण का प्रश्न है। सत्य सदा विभाजन करता है और उपासकों की दो श्रेणियां उत्पन्न करता है। उस पद में एक वर्ग नाश होता है और एक वर्ग आनंद पूर्वक व्यवस्था का पालन करता है। तथापि ये ध्यान देने योग्य है कि सुलेमान का परामर्श सत्य के विषय में चल रहे विवाद के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ये 10 कुआरियों के दृष्टांत के संदर्भ में भी है, क्योंकि 10 कुआरियों का दृष्टांत अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के अनुभव का एक प्रमुख उदाहरण है।
मूर्ख अपने मन की सब बातें कह डालता है, परंतु बुद्धिमान उन्हें बात तक रोके रखता है। यदि कोई शासक झूठी बातों पर कान लगाता है तो उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और कपटी मनुष्य एक साथ मिलते हैं, प्रभु दोनों की आंखों को ज्योति देता है। जो राजा निर्धनों का निष्ठापूर्वक न्याय करता है उसका सिंहासन सदा के लिए स्थिर रहेगा। छड़ी और ताड़ना बुद्धि देती हैं, परंतु अपने हाल पर छोड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ के लिए लज्जा का कारण बनता है। जब दुष्ट बढ़ते हैं तो अपराध बढ़ता है, परंतु धर्मी उनका पतन देखेंगे। अपने पुत्र को अनुशासित कर और वो तुझे विश्राम देगा, हाँ वो तेरी आत्मा को आनंद देगा। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश होते हैं, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो सुखी है। नीति वचन 29:1।
मेरा उद्देश्य इन लोगों पर उंगली उठाना नहीं है जो आधुनिक रोम के बारे में मुझसे भिन्न समझ रखते हैं। मेरा उद्देश्य ये दिखाना है कि सुलेमान उपासकों के दो वर्गों को संबोधित कर रहा है जिन्हें वो बुद्धिमान और मूर्ख के रूप में पहचानता है। मूर्ख को दुष्ट भी कहा गया है। दृष्टांत की बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारी अभी दानियेल के 12वें अध्याय के भविष्य सूचक क्रम में बुद्धिमान और दुष्ट के रूप में पहचानी गई हैं।
बहुतों को शुद्ध किया जाएगा, श्वेत किया जाएगा और परखा जाएगा, परंतु दुष्ट दुष्टता ही करेंगे। और दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियेल 12:10।
सुलेमान और दानियेल एकमत हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में समस्त भविष्यवाणी की गवाही मेल खाती है। बुद्धिमान ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं।
और जो बुद्धिमान हैं वे आकाशमंडल की चमक के समान चमकेंगे, और जो बहुतों को धर्म की ओर फेरते हैं वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। परंतु हे दानियेल, इन वचनों को बंद कर दे और पुस्तक पर अंत का समय होने तक मुहर लगा दे। बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। दानियेल 12:3-4।
10वां पद उस 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया की पहचान करता है जो उन कुमारियों को छांटती है जिन्हें 1,44,000 में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। दोनों ही मामलों में छंटाई और परीक्षण की प्रक्रिया इस बात पर आधारित है कि क्या कुमारियां उस ज्ञान वृद्धि दर्शन को समझती है जिसकी मुहर 1989 में अंत के समय खोली गई थी। अंतिम दिनों में अंत का समय सन 1990 अनो से था, जब दानियेल अध्याय 11 के पद 40-45 उन्मोचित हुए। तब ये स्थापित हुआ कि उन पदों का विषय उत्तर के राजा के अंतिम उदय और पतन के बारे में था। तब ये भी स्थापित हुआ कि उन पदों में उत्तर का राजा अंतिम दिनों की पापाई शक्ति है। प्रेरणा ने कभी मॉडर्न रोम अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया। ये अभिव्यक्ति मैंने गढ़ी थी ताकि अंतिम दिनों की पापाई शक्ति का प्रतिनिधित्व किया जा सके, क्योंकि भविष्यवाणी की दृष्टि से मॉडर्न अंतिम दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। एलन व्हाइट ने कभी मॉडर्न रोम अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया। दानियल 11 के अंतिम 6 पदों में उत्तरी राजा किसका प्रतिनिधित्व करता है? इस विषय में कुछ गलत विचार प्रचलित हैं, किंतु सही समझ केवल एक ही है। इन पदों में उत्तरी राजा को पापाई सत्ता मानने की समझ अनेक भविष्यवाणी साक्ष्यों में निकाली गई है। पद 40 की शुरुआत उसत्तरहंट टॉटेव में पापाई सत्ता को मरणांतक घाव लगने की पहचान से होती है। फिर पद 41 से 43 उस मरणांतक घाव के भरने में सम्मिलित प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। पद 44 उस संघ देश का वर्णन करता है जो पापाई सत्ता को क्रोधित करता है, और पद 45 में पापाई सत्तम अपने अंतिम और पूर्ण अंत को प्राप्त करती है, जो दर्शन 1989 में मुहर खोलकर प्रकट किया गया। वही अंतिम दिनों में पापाई सत्ता के अंतिम उत्थान और पतन का दर्शन है। वही दर्शन ज्ञान की वृद्धि है, जो उन पदों में निहित ज्ञान को स्वीकार या अस्वीकार करने के आधार पर उपासकों की दो श्रेणियों को उत्पन्न और प्रकट करता है। उसी अध्याय के अनुसार, जिसमें 1989 में ज्ञान की वृद्धि की मुहर खोली गई थी, तेरे लोगों के लुटेरे जो अपने आप को ऊंचा करते हैं और अंततः गिरते हैं, वो प्रतीक हैं जो दर्शन को स्थापित करता है। अंतिम छनाई में पहला परीक्षात्मक प्रश्न ये है कि तेरे लोगों के लुटेरे के रूप में किसका प्रतिनिधित्व किया गया है, क्योंकि वही वो भविष्य सूचक प्रतीक है जो दर्शन को स्थापित करता है। क्या वे लुटेरे पापसी सत्ता है या वे संयुक्त राज्य अमेरिका है? दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक ही पुस्तक हैं जो भविष्यवाणी की उसी श्रृंखला के दो साक्षियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दानियल आरंभ है और प्रकाशित वाक्य अंत है, और मिलकर वे उस सत्य के दो साक्षियों का प्रतिनिधित्व करती है जो 1989 में अंत के समय पर मुहर खोलकर उद्घाटित किया गया था। दानियल उस शुद्धिकरण प्रक्रिया का वर्णन करता है जो 1929 में जब यहूदा के गोत्र के सिंह ने आयत 40 से 45 की मुहर खोली तब उत्पन्न हुई। उसी समय एक परीक्षा की प्रक्रिया आरंभ हुई ताकि ये निर्धारित और प्रकट किया जा सके कि अंत के दिनों में 144,000 कहलाने वाली वाचा प्रजा का गठन करने वाले याजक कौन होंगे। होशे ये जोड़ता है कि जो लोग अंत के दिनों के ज्ञान की वृद्धि को अस्वीकार करते हैं, वे 144,000 का गठन करने वाले याजकों में से नहीं बनेंगे।
मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नाश हो रही है, क्योंकि तूने ज्ञान को ठुकराया है, इसलिए मैं भी तुझे ठुकराऊंगा कि तू मेरे लिए याजक न रहेगा। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल दिया है, मैं भी तेरे पुत्रों को भूल जाऊंगा। होशे 4:4।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये बताती है कि जिस ज्ञान की मुहर खुलती है और जिसे एक वर्ग अस्वीकार करता है, वही अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले उनके नकारे जाने का कारण बनता है।
और उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को मुहर बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अधर्मी है वो अधर्मी ही बना रहे, और जो अशुद्ध है वो अशुद्ध ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22:10-11।
मिलरवादी इतिहास 144,000 के इतिहास को दर्शाता है, और मिलरवादी तथा 144,000 मिलकर प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश और कार्य की शुरुआत और समाप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। समांतर इतिहास उन घटनाओं की पहचान कराते हैं जो अनुग्रह काल के समापन से संबंधित हैं। दोनों इतिहासों के कार्य को एलिय्याह और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना द्वारा पूर्व छायांकित किया गया है।
कंपते हुए विलियम मिलर ने लोगों के सामने परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का उद्घाटन करना शुरू किया। अपने श्रोताओं को भविष्यवाणियों के माध्यम से मसीह के द्वितीय आगमन तक ले जाते हुए हर प्रयास के साथ वो और सशक्त होता गया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के प्रथम आगमन की घोषणा की और उसके आने के लिए मार्ग तैयार किया, वैसे ही विलियम मिलर और जो उसके साथ जुड़े, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के द्वितीय आगमन का प्रचार किया। अर्ली राइटिंग्स 289-230।
मिलराइट संदेश ने परख काल के समाप्त होने से जुड़ी घटनाओं की पहचान की, जैसा कि एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों द्वारा दर्शाया गया है।
यह आवश्यक था कि मनुष्यों को उनके संकट के प्रति सचेत किया जाए, कि उन्हें उस गंभीर घटनाक्रम की तैयारी करने के लिए जगाया जाए जो अनुग्रह अवधि के समापन से संबंधित है, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 310।
1985 में सोवियत संघ के पतन के साथ डैनियल की पुस्तक का वो भाग जो अंतिम दिनों से संबंधित था, उसकी मुहर खोल दी गई और एक परीक्षण प्रक्रिया शुरू हुई। ये परीक्षा परमेश्वर के लोगों की इस क्षमता या अक्षमता पर आधारित थी कि वे दानियेल अध्याय 11 की अंतिम 6 आयतों में दर्शाई गई ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं या उसे अस्वीकार करते हैं। वे आयतें जो अध्याय 12 की पहली आयत तक ले जाती हैं, जो परिवीक्ष के समापन को चिन्हित करती है। इसके बाद परिवीक्ष के समापन से संबंधित घटनाओं का संदेश भी मुहर खोलकर प्रकट किया गया और उन लोगों का कार्य शुरू हुआ जो 144,000 के याजक बनने के उम्मीदवार थे। उनका कार्य उस खंड में प्रस्तुत संदेश को समझना और उसकी घोषणा करना था। 144,000 का संदेश और कार्य ये था कि वे मुहर खोलकर प्रकट किए गए संदेश को प्रस्तुत करें, ताकि लोगों को परिवीक्ष के समापन से जुड़ी गंभीर घटनाओं के लिए तैयार होने के लिए गगाया जा सके।
आज एलिया और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की आत्मा और सामर्थ्य में परमेश्वर द्वारा नियुक्त दूत न्याय के लिए नियत संसार का ध्यान उन गंभीर घटनाओं की ओर आकर्षित कर रहे हैं जो परहक के अंतिम क्षणों तथा मसीह यीशु के राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रकट होने के संबंध में शीघ्र ही होने वाली हैं। शीघ्र ही प्रत्येक मनुष्य का शरीर में किए गए कर्मों के लिए न्याय होगा। परमेश्वर के न्याय का समय आ गया है और पृथ्वी पर उसकी कलीसिया के सदस्यों पर ये गंभीर जिम्मेदारी है कि वे उन लोगों को चेतावनी दें जो मानो शाश्वत विनाश के ठीक कगार पर खड़े हैं। विस्तृत संसार के प्रत्येक उस मनुष्य को जो ध्यान देगा उस चल रहे महान संघर्ष में दांव पर लगे सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, वे सिद्धांत जिन पर समस्त मानव जाति की नियति टिकी हुई है। भविष्यद्वक्ता और राजा 715-770।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मसीह दोनों का इतिहास, साथ ही मिलरवादियों का इतिहास, 144,000 के संदेश और कार्य को दर्शाते हैं। यूहन्ना और मसीह दोनों ने अपने संदेश को अनुग्रह काल की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा।
परंतु जब उसने फरीसियों और सदूकियों में से बहुतों को अपने बपतिस्मा के लिए आते देखा तो उनसे कहा, हे सांपों की संतान, तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने के लिए किसने चेताया? मत्ती 3:7।
क्राइस्ट ने यरूशलेम की विनाश को दर्शाया, वही विनाश जिसकी निकटता के बारे में जॉन ने तर्क वितर करने वाले यहूदियों को चेतावनी दी थी। यीशु ने उस विनाश को क्रोध के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जो तब आरंभ होता है जब वो माइकल के रूप में डैनियल के अध्याय 12:1 में खड़ा होता है।
मसीह ने यरूशलेम में उस संसार का एक प्रतीक देखा जो अविश्वास और विद्रोह में कठोर हो चुका था और जो परमेश्वर के दंडात्मक न्यायों से मिलने को शीघ्रता से बढ़ता चला जा रहा था। पतित मानव जाति के दुख जो उनकी आत्मा पर दबाव डाल रहे थे ने उनके होंठों से वो अत्यंत कड़वा विलाप निकलवा दिया। उन्होंने पाप का अभिलेख मानवीय दुर्दशा, आंसुओं और रक्त में अंकित देखा। पृथ्वी के पीड़ितों और दुख सहने वालों के लिए उनका हृदय असीम करुणा से द्रवित हो उठा। वे सबको राहत देना चाहते थे, परंतु उनका हाथ भी मानवीय दुख की बाढ़ को वापस नहीं मोड़ सकता था। बहुत कम लोग अपने एकमात्र सहायता स्रोत की खोज करते। वे उद्धार को उनकी पहुंच में लाने के लिए मृत्यु तक अपनी आत्मा उंडेल देने को तैयार थे, तथापि जीवन पाने के लिए उनके पास आने वाले भी बहुत कम थे।
स्वर्ग की महिमा आंसुओं में, अनंत परमेश्वर का पुत्र आत्मा में व्याकुल क्लेश से दबा हुआ, उस दृश्य ने समस्त स्वर्ग को विस्मय से भर दिया। वो दृश्य हमें पाप की अत्यधिक पापमयता प्रकट करता है। ये दिखाता है कि परम सामर्थ्य के लिए भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के परिणामों से दोषियों को बचाना कितना कठिन कार्य है। यीशु ने अंतिम पीढ़ी तक देखते हुए संसार को ऐसे ही एक छल में फंसा हुआ देखा जैसा यरूशलेम के विनाश का कारण बना था। यहूदियों का महान पाप मसीह का अस्वीकार था। मसीही जगत का महान पाप होगा,
कि व्यवस्था जो स्वर्ग और पृथ्वी में उसके शासन की नींव है का अस्वीकार, यहोवा की आज्ञाएं तिरस्कृत की जाएंगी और अमान्य ठहराई जाएंगी, लाखों लोग पाप की बंधन में शैतान के दास दूसरी मृत्यु का दंड भुगतने को ठहराए गए अपने दर्शन के दिन सत्य के वचनों को सुनने से इनकार कर देंगे। भयंकर अंधता, विचित्र मोह, महान विवाद। 22 से का
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और स्वयं मसीह द्वारा घोषित चेतावनी का संदेश एक ही था। उसी प्रकार मिलरवादियों का चेतावनी संदेश भी वही संदेश था जो अनुग्रह काल के समापन से संबंधित घटनाओं की पहचान करता है, जैसा कि 144,000 घोषणा करेंगे। तीन साक्षी, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, मसीही और मिलरवादी, ये साक्ष्य देते हैं कि 144,000 का कार्य और संदेश एक जीवन मरण की परीक्षण प्रक्रिया है जो उस ज्ञान की वृद्धि द्वारा संपन्न होती है जिसकी मुहर 1927 में खोली गई। उस समय जो संदेश मुहर से खोला गया वही अंतकालीन दर्शन है जिसे बुद्धिमान समझें तो ही वे याजक बन सकेंगे जो 144,000 का समूह बनाते हैं। यदि वे अभ्यर्थी उस दर्शन को नहीं समझते तो वे दुष्ट या मूर्ख ठहराए जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वे और उनके बच्चे उस दर्शन जो ज्ञान की वृद्धि है को ठुकराने के अनुरूप ही अस्वीकार कर दिए जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि रोम वो शक्ति है जो अपने आप को ऊंचा ठहराती है, परमेश्वर की प्रजा को लूटती है और फिर गिर पड़ती है तथा दर्शन को स्थापित करती है। ये प्रश्न कि आधुनिक रोम पापल सत्ता है या संयुक्त राज्य अमेरिका, वही परीक्षा है जो ये प्रकट करती है कि परीक्षार्थी बुद्धिमान कुवारिया है या मूर्ख कुवारिया। ये परीक्षा दानियल की पुस्तक से निकला एक भविष्यवाणी संबंधी परीक्षण है जिसकी बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पुष्टि की जाती है और उसे परिपूर्ण किया जाता है। आधुनिक रोम का विषय केवल पापल सत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक चुनाव मात्र नहीं है, ये 144,000 के लिए अंतिम परीक्षा है। ये एक भविष्यवाणी संबंधी परीक्षा है और जब इसे ठीक से समझा जाता है तो ये परमेश्वर की पवित्र ठहराई हुई भविष्यवाणी की गवाही में प्रस्तुत अंतिम परीक्षण प्रक्रिया के हर निरूपण को समाहित करती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मसीह के समय की परीक्षा प्रक्रिया दानियल की पुस्तक से व्युत्पन्न थी, जैसे मिलरवादियों के समय की परीक्षा प्रक्रिया भी भविष्यवाणी संबंधी परीक्षा के रूप में सत्य कैसे स्थापित होता है इसकी कार्यविधि को ठीक से लागू करना परीक्षार्थियों के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि ये सही मत रखना कि आधुनिक रोम कौन है। चाहे आधुनिक रोम की सही पहचान का प्रश्न हो या सही कार्यविधि के अनुप्रयोग का, परीक्षा के दोनों तत्व दानियल की पुस्तक में निहित है। दानियल के प्रथम अध्याय में दानियल तीन चरणीय परीक्षा प्रक्रिया से होकर गुजरा, आरंभ आहार से हुआ, फिर एक दृश्य परीक्षण और अंत में वो परीक्षा जो नबुकदनेस्सर ने कराई, जो बाइबल में उत्तर के राजा अर्थात अंतिम दिनों की पोपाई शक्ति का प्रतीक है।
और इन चार युवकों के विषय में परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की विद्या और बुद्धि में ज्ञान और कुशलता दी और दानियल को सब प्रकार के दर्शनों और स्वप्नों की समझ दी। फिर उन दिनों के अंत में जिनके विषय में राजा ने कहा था कि उन्हें उपस्थित किया जाए, तब खोजों के प्रधान उन्हें नबुकदनेस्सर के सम्मुख ले आया और राजा ने उनसे बातें की और उनमें दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया के समान कोई न पाया गया, इसलिए वे राजा के सामने उपस्थित रहते थे और बुद्धि और समझ की हर बात में जिनके विषय में राजा ने उनसे पूछताछ की उसने उन्हें अपने सारे राज्य के सब जादूगरों और ज्योतिषियों से 10 गुना उत्तम पाया। दानियल 1:17-10:20।
दिनों के अंत में जो भविष्यवाणी की दृष्टि से अंतिम दिन है जब 144,000 की परीक्षा होती है, दानियल और वे तीन योग्य पुरुष पाए गए उसके सारे राज्य के सभी जादूगरों और ज्योतिषियों से 10 गुना बेहतर और दानियल के पास सब दर्शनों और स्वप्नों की समझ थी। दानियल 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम दिनों में उस ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं जो तब आई जब मसीह ने यहूदा के गोत्र के सेह के रूप में 1189 में दानियल की पुस्तक के उस भाग को जो अंतिम दिनों से संबंधित था की मुहर खोल दी। दानियल केवल स्वप्नों और दर्शनों के विषय में दूसरों से अधिक नहीं समझता था, उसके पास सब दर्शनों और स्वप्नों की समझ थी। वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो रेखा पर रेखा की पद्धति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वही पद्धति सब दर्शनों और स्वप्नों को एक सुसंगत संदेश में एकत्र करती है। वो संदेश जो सब स्वप्नों और दर्शनों को एक ही भविष्यवाणी की रेखा में समेटता है, अनुग्रह काल के समापन से संबंधित घटनाओं की पहचान कराता है। वो संदेश उस भविष्यवाणी चिन्ह द्वारा स्थापित होता है जो आधुनिक रोम है, वह शक्ति जो स्वयं को ऊंचा उठाती है, परमेश्वर की प्रजा को लूटती है और गिर जाती है। उस शक्ति को केवल सही पद्धति का अनुप्रयोग करके ही स्थापित किया जा सकता है। बाइबल का अध्ययन करने का दावा करने वाले अधिकांश लोग पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति को अस्वीकार करते हैं, और कुछ जो इसे अपनाने का दावा करते हैं वे पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति के नियमों को गलत ढंग से लागू करते हैं। इन नियमों को सबसे पहले मिलरवादियों ने सार्वजनिक अभिलेख में दर्ज किया था, और परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा को पहले से चेताया गया है कि जो वास्तव में तीसरे स्वर्गदूत के संदेश वाहक हैं, वे भविष्यवाणी की व्याख्या के लिए विलियम मिलर द्वारा दिए गए नियमों का उपयोग करेंगे।
जो लोग तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रचार करने में लगे हैं, वे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन उसी विधि के अनुसार कर रहे हैं जो फादर मिलर ने अपनाई थी। रिव्यू एंड हेराल्ड, 25 नवंबर 1846।
विलियम मिलर ने प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 3 स्वर्गदूतों के संदेश की शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया, और उनका प्रतिरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो उस संदेश की शुरुआत था जिसका समापन मसीह में हुआ। बहन व्हाइट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मसीह तक की परीक्षा प्रक्रिया को 3 स्वर्गदूतों की परीक्षा प्रक्रिया के साथ सीधे समांतर रखती है। यूहन्ना ने संदेश की शुरुआत की और क्रूस से ठीक पहले, जब मसीह अपने चेलों को कैसरिया फिलिप्पी ले गए, तभी यीशु ने उस संदेश के वे विवरण जोड़े जिसकी शुरुआत यूहन्ना ने की थी। सबसे पहला आरंभिक सत्य जिसे यूहन्ना ने मसीह को देखकर पहचाना, ये था कि मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है।
ये बातें यर्दन के पार बेतबरा में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यही वो है जिसके विषय में मैंने कहा था कि मेरे बाद एक मनुष्य आता है जो मुझसे बड़ा ठहराया गया है, क्योंकि वो मुझसे पहले से था। यूहन्ना 1:30-99।
तब 3.5 वर्ष की परीक्षा की अवधि शुरू हुई जो क्रूस पर समाप्त हुई। क्रूस से ठीक पहले यूहन्ना की हत्या के बाद यीशु ने यूहन्ना के उसी प्रथम कथन की व्याख्या करना आरंभ किया।
जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के क्षेत्र में आया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र कौन हूं? इन्होंने कहा, कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, कुछ इलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तब शमून पत्रस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उसे उत्तर दिया, धन्य है तू शमून योना का पुत्र, क्योंकि ये बात तुझे मांस और रक्त ने प्रकट नहीं की, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पाताल के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे किसी से न कहें कि वो यीशु मसीह है। उसी समय से यीशु अपने शिष्यों को समझाने लगा कि उसे यरूशलेम जाना अवश्य है, और बुजुर्गों, महायाजकों और शास्त्रियों से बहुत कष्ट उठाना और मारा जाना, और तीसरे दिन फिर जी उठना होगा। मत्ती 16:13-21।
मसीह के समय में पनियम का नाम कैसरिया फिलिपी था और पनियम की पहचान दानियल 11 के 14वें पद के बाद वाले पद में होती है, जहां तुम्हारी प्रजा के लुटेरों का परिचय कराया जाता है जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं परंतु गिर जाते हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का संदेश प्रेरित और परिपूर्ण आरंभ का वो संदेश था जो मिलराइट संदेश का प्रतिनिधित्व करता था जो मिलर के नियमों पर स्थापित किया गया था। अंत में मसीह का संदेश जो यूहन्ना के संदेश पर आधारित था और उसे विस्तारित करता था, तीन स्वर्गदूतों के अंतकालीन संदेश का प्रतिरूप था। वह संदचोक मिलर के नियमों पर आधारित है और उन विवरणों से समृद्ध किया जाता है जो पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति के अंत में पहुंचने पर मिलर के संदेश में जोड़े जाते हैं। जो प्रतीक आधुनिक रोम के प्रतीक के साथ मिलकर दर्शन की स्थापना करता है, उसकी गलत समझ पर पहुंचना मसीह के इतिहास में उन लोगों के समानांतर है जिन्होंने क्रूस के संदेश को अस्वीकार किया। हमें बताया गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश को अस्वीकार करने वाले यहूदी यीशु की शिक्षाओं से लाभान्वित नहीं हो सके, और ये कि उन यहूदियों का इतिहास जिन्होंने ऐसा ही किया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने पहले स्वर्गदूत के संदेश को अस्वीकार किया। मिलराइटों ने तेरे लोगों के लुटेरों की पहचान पापसी सत्ता के रूप में की, जिसे मैंने बाद में आधुनिक रोम कहकर संबोधित किया। हम इन विचारों की चर्चा अगले लेख में जारी रखेंगे।